सफा नंबर 46, जंग प्लासी। 1752 के बाद कई मुफ्तियों ने फतवे दे रखे थे कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम नहीं रहा बल्कि दारुल हरब बन चुका है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम को मरहटों के मुकाबले में मदद करने के वादे के इवज इससे बंगाल, बहार, उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली थी। इन सूबों का मालिया कंपनी बादशाह के मुख्तियार की हैसियत से वसूल करती थी, लेकिन बादशाह का इसमें कोई दखल ना था। कंपनी का सदर मुकाम कलकत्ता था। हिंदुस्तान के मशरकी सूबों का नज़्मो नसक रफ्ता रफ्ता बादशाह के हाथों से निकलता जा रहा था और इन पर अंग्रेज काबज हो रहे थे। बादशाह की हैसियत महज नुमाइशी थी। 1835 में कंपनी ने हिंदुस्तान का सिक्का तब्दील कर दिया और 1837 में फारसी की सरकारी जुबान की हैसियत खत्म कर दी। बिलआखिर 1857 के हंगामे में इसे बादशाह को मजूल करने का मौका मिल गया। बादशाह को मुलक बदर करके रंगून भेज दिया गया। शहजादों को हुमायूं के मकबरा के नजदीक गोली से उड़ा दिया गया और इस तरह मुगल तख्त के दावेदारों का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। हिंदुस्तान ताज बरतानिया के मतहत आ गया। अगरचा मलका विक्टोरिया ने 1858 में ऐलान किया कि हिंदी राजा के साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा, बगावत की जिम्मेदारी मुसलमानों नो पर डाली गई। इनकी जागीरें, अराजी और जायदादें बहक्के सरकार जब्त कर ली गईं। नया तलीमी निज़ाम ऐसा नाफज हुआ जिसमें अरबी, फारसी और दीगर इस्लामी लूम को कोई हैसियत हासिल ना थी। 1864 में काजी मकूफ कर दिया गया और इस्लामी कानून और जाब्ते की बजाय अंग्रेजी कानून व जाब्ता नाफज किया गया। नीज मुसलमानों पर बहसीयत मजमुई सरकारी मुलाजमत के दरवाजे बंद कर दिए गए। बहरहाल यह कहना गलत होगा कि बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी सियासी हैसियत के तगैयर को चुपचाप और किसी रद्द अमल या एहतजाज के बगैर कबूल कर लिया। अलबत्ता इस सिलसिला में सैयद अहमद बरेलवी 1786 ता 1831 और इनके रुफका व मुकतदीन मसलन शाह मोहम्मद इस्माइल, शाह अब्दुल गनी के बेटे, शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज के भतीजे और मौलाना अब्दुल हई ने नहायत और अहम और दूरस खिदमात अंजाम दी। इनकी तरहीक इस्लाह मुसलमानों की मजहबी, इखलाकी, सियासी और इकतसादी इन्हितात के खिलाफ एक तरह का फितरी रद्द अमल था। ये तहरीक दरअसल हकीकत इस्लाम को शिरक और बिदत की लानतों से मुबर्रा करके इसकी असल पाकिजगी की तरफ रजू करने की दावत थी। मुसहलीन ने मुसलमानों को तौहीद व रसालत, कुरान और सुन्नत और अरकान दीन की अहमियत का एहसास दिलाया और हर नू के शिरक व बिदत को छोड़ने की तलकीन करके इन्हीं ख्वाब गफलत से बेदार किया। अहयाए इस्लाम की इस तहरीक का नुमाया पहलू सियासी था। मुसहलीन के नज़दीक चूंकि हिंदुस्तान दारुल हरब बन चुका था, इसलिए अपनी सियासी कुव्वत की बहाली के लिए मुसलमानों पर जिहाद फर्ज था। सैयद साहब के अपने तबलीगी दौरों के दौरान दावत इस्लाह और तंजीम जहाद पर इसरार ने बेशतर शहरों और देहात के मुसलमानों के दिलों में आग लगा दी। पटना इस तरीके का मरकज बना। रुपया इकट्ठा हुआ, वसाइल जमा किए गए और हजारों की तादाद में मुजाहिदीन इनकी तहरीक में शामिल होने लगे, जो इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे। 1822 में सैयद साहब ने अपने रुफका और मुक्तदीन समेत बैतुल्ला के हज के लिए गए। वो दिल्ली से बरस्ता पटना कलकत्ते पहुंचे, जहां कलकत्ते से इनका काफिला जहाज़ों के जरिए अरब रवाना हुआ। वो बरस्ता बम्बई वापस हिंदुस्तान आए और शुमाल की जानब तबलीगी दौरों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू किया। सिख चौंके पंजाब, सरहद और कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर काबिज थे, इसलिए इन्होंने सिखों के खिलाफ जहाज की तलकीन की। सूरत, हैदराबाद, दक्कन, कलकत्ता, ढाका, पटना, लखनऊ, दिल्ली और दीगर शहरों के मुसलमानों ने इन्हीं ना सिर्फ दिल खोर कर माली अमदाद दी बल्कि इन शहरों और गिरदोनवा के देहात से मुजाहिदीन भी जौक दर जौक इनकी अस्करी तंजीम में शामिल होते चले गए। बाद अजां सैयद साहब सिंध गए और वहां के हुक्मरानों के साथ सिखों के खिलाफ जहाद में अमदाद का मुआहदा किया। 1824 में वो सरहद जा पहुंचे और अफगानों और पठान कबाइल को अपने साथ मिलाया। सरहद को मरकज जहाद इसलिए बनाया गया कि वहां मुसलमानों की अक्सरियत थी और इस इलाके की पुश्त पर मुस्लिम ममालक भी मौजूद थे। इसी दौरान हिंदुस्तान से मुजाहिदीन सरहद पहुंचने लगे। सरफरोशों और गाजियों की ये जमातें मशरकी बंगाल और दक्कन के दूर दराज इलाकों से सरहद आकर जमा होने लगी। 21 दिसंबर 1826 को सैयद साहब ने सिखों के खिलाफ बाकायदा ऐलान जहाद किया। 1826 से लेकर 1830 तक इनकी ज़ेर क़यादत लश्कर इस्लाम ने सिखों के खिलाफ कई मुकामात पर जंग की और इन्हें शिकस्त दी। 1830 में सिखों को को पेशावर के महाल पर शिकस्त हुई और मुजाहिदीन ने पेशावर पर कब्जा कर लिया, मगर कुछ अरसे बाद चंद अफगान सरदारों की सिखों के साथ साजिश के बायस पेशावर इनके हाथ से निकल गया। 1831 में सैयद साहब और शाह मोहम्मद इस्माइल सिखों के खिलाफ लड़ते हुए बालाकोट में शहीद हो गए। जब सैयद साहब की क्यादत में मुजाहिदीन सिखों के खिलाफ सरहद पर लड़ रहे थे, इनके एक रफीक मीर नसार और इन मशरकी बंगाल में मुस्लिम काश्तकारों को हिंदू जागीरदारों के जुल्मों इस्तबदाद के खिलाफ मुनज़म किया। मशरकी बंगाल में दीनी इसलाह के लिए एक तहरीक मौलवी शरीयतुल्ला ने 1804 में से कायम कर रखी थी। मौलवी शरीयतुल्ला ने भी यही ऐलान किया था कि हिंदुस्तान चूंकि दारुल हरब बन चुका है, इसलिए मुसलमानों पर जहाद फर्ज है। सफा नंबर 50। इनके फरजान दुदो मियाँ ने इस तहरीक को बहादुरपुरा में जिंदा रखा। मीर नसार अली सैयद साहब को हज के दौरान मिले और इनके मुक्तद हो गए। वापसी पर उन्होंने सैयद साहब के नजरियात की तबलीग मशरकी बंगाल के मुख्तलिफ शहरों और देहात में की और बिलखसूस मुस्लिम काश्तकारों की अस्करी तंजीम बनाई। 1831 में उन्होंने हिंदू जागीरदारों के खिलाफ ऐलान जहाद किया, मगर हिंदुओं ने अपनी मदद के लिए कलकत्ते से अंग्रेजी फौज तलब कर ली। मीर नसार अली और गुलाम मसूम की जेर क्यादत मुस्लिम काश्तकार अंग्रेजी फौज के खिलाफ बड़ी जवानमर्दी से लड़े, मगर शिकस्त खाई। मीर नसार अली इस लड़ाई में शहीद हुए और गुलाम मसूम को अंग्रेजों ने कलकत्ता में फांसी दे दी। सरहद में सैयद साहब की शहादत के बाद इनके हामियों ने सिखों के खिलाफ जहाद जारी रखा। मुजाहिदीन सथाना में जमा हुए और इन्होंने मौलवी नसीरुद्दीन को अपना कायद मुंतखब किया। थोड़े अरसे बाद मौलाना अनायत अली और इनके भाई मौलाना वलायत अली बिहार से मजीद कमांक लेकर इनसे आ मिले। सिंध और टोंक्स के मुस्लिम हुक्मरानों से भी अमदाद हासिल की गई। चुनाचा मौलाना अनायत अली की जेर क्यादत सिख फौजियों पर बेदरपे हमले किए गए और इन्हें बालाकोट मानसेरा और मुजफ्फराबाद से निकाल दिया गया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद चूंकि सिख महलाती साजिशों का शिकार हो गया, इसलिए इनमें मुजाहिदीन का मुकाबला करने की सक्कत ना रही थी। चुनाचा 1846 तक मुजाहिदीन ने दरिया सिंध के बाएं किनारे यानी सरहद के तमाम इलाके सथाना से लेकर कश्मीर तक सिखों से बासानी खाली करा लिए। अब तक मुजाहिदीन ने सिखों अंग्रेजों के खिलाफ बाकायदा ऐलान जहाद ना किया था, तहम जब अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उन्होंने बादशाह अफगानिस्तान की मदद की थी। सफा नंबर 51। 1823 तक बरसगीर के तमाम बेशतर इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, मगर अभी तक शुमाल मगरबी हिस्सा पंजाब सरहद कश्मीर सिंध और बलोचिस्तान इनकी दस्तरस से बाहर था। 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा कर लिया और इसका अलहाक सूबा बंबई के साथ कर दिया गया। 1846 में सिखों की शिकस्त के बाद अंग्रेज पंजाब के बेशतर हिस्से पर काबिज हो गए। इन्होंने मौलाना नायत अली और मौलाना वलायत अली को बाहर वापस से चले जाने के लिए पैगाम भेजा। इन दोनों के अहलो अयाल पटना में थे। पास वो जब पटना पहुंचे तो इन पर 4 साल के लिए पटना की हदूद से बाहर ना निकलने की पाबंदी लगा दी गई। पंजाब में सिख सल्तनत का हशर भी नहायत अबरतनाक है। महाराजा रणजीत सिंह ने मज़ाहर या सिखों की हुकूमत का जो ढांचा खड़ा किया था, इसे हुकूमत तो नहीं अलबत्ता एक तरह का आर्जी फौजी गलबा कहा जा सकता है। यह गलबा इसकी जिंदगी तक कायम रहा, लेकिन जब वो मरा तो इसके जानशीनों ने चंद सालों ही में इसका तारोपोद हमेशा के लिए बखेर कर रख दिया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद इसका पहला बेटा खड़क सिंह गद्दी पर बैठा। खड़क सिंह अफीम का रसिया था, दिन में 2 मरतबा अफीम खाकर होशो हवोस खो देने का आदी था। जाहिर है हुकूमत ऐसे शख्स के हाथों में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी, लिहाजा 1 साल के अंदर इसके वजीर आजम ध्यान सिंह और चपचीत सिंह के दरमियान इकतदार की कशमकश हुई, जिसके नतीजे में चीत सिंह और इसके खानदान के अफराद का सफाया कर दिया गया और खड़क सिंह को मजूल करके इसका बेटा नौनिहाल सिंह गद्दी पर बैठा। नौनिहाल सिंह ने अपने बाप को लाहौर की एक हवेली में नजरबंद कर दिया। खड़क सिंह 1840 में मर गया, मगर जिस दिन खड़क सिंह की मौत वाकया हुई, इसी रोज किसी साजिश के तहत नौनिहाल सिंह पर दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया गया और वो इसके नीचे दबकर मर गया। इन्हीं दिनों में इसकी मां रानी चांद कौर ने महाराजा रणजीत सिंह के दूसरे बेटे और अपने शौहर के भाई शेर सिंह की जान लेने की कोशिश की, मगर दोपहर के वक्त जब रानी चांद कौर सो रही थी, इसकी नौकरानियों ने इसे इसकी ख्वाबगाह में सर में ईंट मारकर खत्म कर दिया। नौनिहाल सिंह की मौत के बाद महाराजा रणजीत सिंह का दूसरा बेटा शेर सिंह गद्दी पर बैठा। वो हर वक्त शराब के नशे में धत रहता था। बहरहाल 15 सितंबर 1843 को जब वो एक फौजी दस्ते का मुआयना कर रहा था, रानी चांद कौर के हामी अजीत सिंह संधा वालिया ने इसे गोली मारकर उड़ा दिया। एन इसी लम्हे जब वो ये कत्ल वकूफ पजीर हो रहा था, करीब ही एक बगीचा में इसका चाचा लहंग सिंह शेर सिंह के 12 साल बेटे प्रताप सिंह की तलवार से टुकड़े उड़ा रहा था। इसी दिन ध्यान सिंह और सचीत सिंह को भी कत्ल कर दिया गया। शेर सिंह के कत्ल के बाद महाराजा रणजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा दलीप सिंह नाबालिग गद्दी पर बैठा और ध्यान सिंह का बेटा हीरा सिंह इसका वजीर आजम बना। हीरा सिंह की अपने चाचा सजीत सिंह के साथ दुश्मनी थी। चुनाचा 21 दिसंबर 1844 को हीरा सिंह शाहदरा के करीब कत्ल कर दिया गया। 1846 में सिखों ने अंग्रेजों के हाथों शिकस्त खाई और अंग्रेज पंजाब पर हावी हो गए। इन्होंने सिख सल्तनत के 3 हिस्से कर दिए। लाहौर का इलाका सिखों के पास रहने दिया। कश्मीर गुलाब सिंह डोगरा के हाथ इसकी खिदमत के सिला में बेच दिया गया और बकाया पंजाब अंग्रेजों के कब्जा में चला गया। दलीप सिंह से तवाने जंग वसूल किया गया। इसकी हुकूमत लाहौर तक महदूद कर दी गई और लाल सिंह इसका वजीर आजम बना दिया गया। अंग्रेजों ने लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट के तौर पर मुकर्रर किया। मई 1848 और फरवरी 1849 में सिख फिर अंग्रेजों से नबर आजमा हुए और गुजरात में इन्होंने शिकस्त फाश खाई। नतीजा लाहौर पर भी अंग्रेज काबिज हो गए और सारा पंजाब इनके तसल्लत में आ गया। दलीप सिंह को पंजाब बदर कर दिया गया। वो कुछ अर्सा हिंदुस्तान में अंग्रेजों की पेंशन पर रहा। फिर 1854 में इंग्लिस्तान ले जाया गया, जहाँ इसने सिख मजहब तरक करके ईसाइयत कबूल कर लिया और विक्टर दलीप सिंह नाम अख्तियार किया। वो पेरिस में 1893 में मरा। इसकी बेटी राजकुमारी बांबा इकबाल के जानने वालों और मदहों में से थी। एक मॉडल टाउन लाहौर की एक कोठी में मुकीम थी। इसका इंतकाल गलबन पाकिस्तान बनने के बाद हुआ। मौलाना अनायत अली और मौलाना वलायत अली बरतानवी हिंद को दारुल हर्ब समझते थे। इनके नज़दीक हिंदुस्तान को अंग्रेजों के तसरफ से आज़ाद कराने की खातिर जहाद करना या वहां से हिजरत कर जाना मुसलमानों पर फर्ज था। चुनाचा 4 साल पटना में गुजारने के बाद वो अपने खानदान समेत हिजरत करके सत्थाना जा पहुंचे। कुछ मुद्दत बाद मौलाना वलायत अली वहीं फौत हो गया। 1852 जब मुजाहिदीन और हसन जई किबला ने अंग्रेजों के हलीफ खान अम पर हमला कर दिया। 1850 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों ने मुजाहिदीन की सरकोबी के लिए तकरीबन 16 मरतबा अपनी फौजें भेजी, लेकिन कोई भी मुहिम कामयाब ना हुई। 1857 के हंगामों के दौरान जब अस्करी बगावत के सबब अंग्रेजों को हर जगह नाजुक हालात का सामना करना पड़ा, तो मुजाहिदीन ने सरहद पर इनके खिलाफ सीख पा शेख जाना सलीम खान चंगली बंजतार मंगल थाना और सथाना में जबरदस्त लड़ाई की। बिलाकर 1858 की जंग में अंग्रेजी फौज ने सथाना तबाह कर दिया। मौलाना अनायत अली सथाना की तबाही से 12 रोज बेशतर इंतकाल कर गए। 2 साल तक सरहद में खामोशी रही। इस वक्फे के दौरान में मुजाहिदीन ने मलका में अपने मोर्चे कायम किए और 1861 में वहां से अंग्रेजों पर हमला आवर हुए। रफ्तार रफ्तार पेश कदमी करके 1863 में सथाना पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने फौज भेजी और मुतद्दद लड़ाइयों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ। बिलआखिर अंग्रेजी फौज ने मलका को भी तबाह कर दिया, मगर 5 साल बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई। 1868 में इस इलाके में मुजाहिदीन को जेर करने के लिए एक और फौजी मुहिम रवाना की गई, लेकिन इस लड़ाई का कोई खातर ख्वाह नतीजा बरामद ना हुआ। सरहद में मौजूद जो मुजाहिदीन अंग्रेजों ने गिरफ्तार किए और हिंदुस्तान में जिन हामियों के खिलाफ 1846 और 1866 में मुकदमे कायम किए गए, इनमें से कुछ को फांसी की सजा मिली, लेकिन बेशतर को जजीरा अंडमान में काले पानी की सजा भुगतने के लिए भेज दिया गया। 1870 ने बरसगीर में तारीख इस्लाह और तंजीम जहाद के तमाम मराकज बंद कर दिए गए। तारीख बरसगीर के मुतज़किरा दौर में अंग्रेज मुसलमान को बिलअमूम और मुजाहिदीन को बिलखसूस अपना दुश्मन समझते थे। लॉर्ड एलन ब्रो ने 1843 में तहरीर किया है कि इस हकीकत से चश्मपोशी नहीं की जा सकती कि मुसलमान हमारे सख्त दुश्मन है, इसलिए बेहतर यही है कि बरसगीर की हिंदू अक्सरियत को अपने साथ मिलाया जाए। अंग्रेजों को यकीन था कि 1857 के सरकश फौजियों को मुजाहिदीन की हमायत हासिल थी। इनका इल्ज़ाम यह था कि इस हंगामे से चंद बरस बेशतर जब मौलाना वलायत अली पटना से हिजरत करके सथाना गए थे, तो उन्होंने दिल्ली में बादशाह की रजामंदी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जहाद का ऐलान किया। सर जेम्स आउटराम की नज़र में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की इब्तदा मुसलमानों ने की, क्योंकि कई सालों से मुस्लिम मुबलगीन सारे बरसगीर में इनके खिलाफ ऐलान जहाद कर रहे थे। इसने तहरीर किया है कि मुजाहिदीन ने 1857 के हंगामा में बादशाह को दिल्ली में ताज पहनाया और इससे वफादारी का अहद किया। और इसी तरह इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सथाना की तबाही तक कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया, बल्कि सथाना की तबाही के बावजूद सरहद में लड़ाई जारी रखी और अंग्रेजी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया। और ट्राम के नज़दीक 1864 और 1866 में मुजाहिदीन के खिलाफ मुकदमात की शहादत से भी वाजे था कि मुसलमान अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने की साजिश कर रहे थे। इसकी राय में मुसलमान बरसीर में बरतानवी हुकूमत के इस्तेकाम के लिए एक बड़ा खतरा थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासी हैसियत की तब्दीली को हिंदुओं की तरह कबूल ना किया था। इसलिए मुसलमानों को इत्माद में लेना चाहिए और ना इनकी दोस्ती पर भरोसा करना चाहिए। 1857 की बगावत दरअसल बंगाली फौज की सरकशी थी और इसके इश्तआल का फौरी सबब चर्बी वाले कारतूस थे, मगर ये फौजियों तक महदूद ना थी। गैर मुसाफी आबादी में भी बेइतमानी और बेचैनी वसी पैमाने पर फैली हुई थी। इसलिए अवाम अपने हाँ के सिपाहियों की बगावत से पहले उठ खड़े हुए। बहरहाल इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाली गई। 1858 में जब अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हुआ तो वहां मुसलमान ही इनके इंतकाम का निशाना बने। अंग्रेज और सिख फौजियों ने सरकशों को तोप से उड़ाने, खाल खिंचवाने, मींखें ठोक कर हलाक करने, मशकें कस कर नंगे बदन पर तांबे के पैसे गर्म करके जिस्मों पर सर से पांव तक दागने, चेहरों को संगीनियों से जख्म पहुंचाकर धीमी आग में जलाने और इस किस्म की अजीतियां देकर जान से मारने की सजाएं दी। दिल्ली में लूट मार की क्यामत भी मुसलमानों पर टूटी। मुसलमानों के जो मकान जब्त होकर नीलाम हुए वो हिंदुओं के कब्जे में चले गए। जामिया मस्जिद सिखों की बार्क बने, जीनतुल मसाजिद गोरों का मस्कन थी और नवाब हामद अली खान की मस्जिद में, जो शियों की सबसे बड़ी मस्जिद थी, गधे और खच्चर बांधे गए। दिल्ली में हर तरफ फांसियां अवेजा थीं जिन पर सैकड़ों की तादाद में मुसलमान लटकाए गए। सफा नंबर 55। रसल ने अपनी डायरी में तहरीर किया है कि मुसलमानों को फांसी देने से पहले सूर की खाल में सिया जाता और इनके जिस्मों पर सूर की चर्बी मल दी जाती और मर चुकने के बाद इन्हें जिंदा जला दिया जाता। टेरिवलियान के बयान के मुताबिक जब दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था, जो शख्स भी गाजियों सैयद अहमद की हामियों की जमात में से पकड़ा गया, इसे बगैर किसी जुर्म सबूत जुर्म फांसी पर लटका दिया गया। वो लिखता है कि अंग्रेज जज अगर किसी शख्स के चेहरे मोहरे से भी इसे गाजी की सूरत की मुशाबा पाते जानी, जिस भी शख्स के माथे पर मेहराब होता जब वो बारिश होता, इसे फौरी फांसी पर लटका दिया जाता। कमालुद्दीन हैदर के बयान के मुताबिक 27,000 अहले इस्लाम ने फांसी पाई। 7 दिन बराबर कत्ले आम रहा, बच्चों तक को मार डाला गया, औरतों से जो सलूक किया गया वो बयान से बाहिर है और इसके तसव्वुर ही से दिल दहल जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली तहरीर करते हैं कि सरकशी का असल सबब यानी चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल पर एतराज़ तो हिंदुओं ने किया, लेकिन इल्ज़ाम मुसलमानों पर आयद किया गया। हिंदुओं ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की बजाय तायद की, बल्कि हिंदू प्रेस के ने बारहा अंग्रेज़ों को खबरदार किया कि मुसलमानों को सरकारी तहफ़ से महरूम रखा जाए, क्योंकि इनकी हमदर्दियाँ एक मरूफ नाफरमान मुस्लिम जमात यानी सैयद अहमद की हामियों के साथ हैं। अंग्रेज़ी हुकूमत से मुसलमानों की नफरत और बेजारी की कई वजूहत थी। मुसलमानों का एहसास था कि अंग्रेज़ों की आमद से बेशतर वही बरसगीर के हुक्मरान थे, बेज़ाहिर है वो अपनी सियासी हैसियत में तगैर को बासानी कबूल ना कर सकते थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए अयारी और फरेबकारी से जो भी कदम उठाए, इनकी चोट मुसलमानों ही पर पड़ी। मसलन जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के हसूल के बाद इन सूबों में और दूसरे इलाकों का नज्म व नसक अंग्रेज़ों के हाथों में आया, तो इन्होंने मुस्लिम मुतज़म्मिन को मौकूफ़ करके इनकी जगह अपने अफसर मुकर्रर किए। जब हिंदुस्तान का सिक्का तब्दील किया गया तो मुस्लिम सिक्के की हैसियत ख़त्म होगी। जब फारसी का बतौर सरकारी जुबान खात्मा किया गया तो इसका नुकसान भी फारसी ख्वाह मुस्लिम कारकुनान को हुआ, जो बेरोज़गार हो गए। 1852 में जब इनाम कमीशन मुकर्रर हुआ तो इसमें 35,000 जागीरों की तस्दीकी असनाद तलब की गई और इनमें से 20,000 जब्त कर लेंगे, जो बेशतर मुसलमानों की थी। इन जागीरों की जब्ती के सबब खास तौर पर उधम में, जिसका हलाक 1856 में हुआ, बड़ी बेचैनी फैली। मुस्लिम काश्तकार भी अंग्रेज़ों के हथकंडों से सख्त मुजतरब थे, क्योंकि उन्होंने जो कानून नाफज किए इनसे हिंदू साहूकारों को बरतरी हासिल हो गई। सर सैयद बयान करते हैं कि 1873 के अदाद शुमार के मुताबिक यूपी में कर्जे की वसूली के 50% दावे मुसलमानों के खिलाफ दायर हुए और इसी साल पंजाब में मुसलमानों की अराजी जायदादें या अमलाक जिनकी मलियत 13,80,000 पाउंड थी, हिंदुओं के पास रहन यानी मुंतकिल हुई। 1858 में चुनाचा मुसलमान बादशाह मजूल किया गया था, लिहाजा मुसलमानों पर अस्करी बगावत की जिम्मेदारी भी डाल दी गई और इन पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। नए तलीमी निज़ाम में फारसी, अरबी और दीगर इस्लामी अलूम को कोई हैसियत हासिल ना थी। एशिया टक सोसाइटी सिर्फ संस्कृत पर तहकीक के लिए मखसूस थी, मगर इस्लामी तमदन का मुताला ममनू था। अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ इन मदरसों को तहफ़ देती जो ईसाई मिशनरियों की मलकियत थे और जिनमें ईसाइत की तबलीग की जाती है। ईसाई मुबल्लग पुलिस की मदद से बरसरे आम अपने मजहब को फ़रोग देने के लिए तकरीरें या मुनाजरे करते और दीगर मजाब के बानियों के मुतलक नाजीबा और इश्ताल अंगेज अल्फाज इस्तेमाल करते। सरकारी यतीम खाना में मुस्लिम बच्चों को ईसाई बना लिया जाता। अंग्रेज अफसर अपने मुतहतों को ईसाइत कबूल करने पर मजबूर करते। 1846 में जब काजी मकूफ किए गए तो वो भी मुसलमानों में बेतमनानी फैली। काजी अपनी कानूनी जिम्मेदारियों के अलावा मसाजिद में इमामत का फर्ज अदा करते थे। निकाह खवानी और औकाफ की निगरानी भी इन्हीं का काम था। इनकी मुकाफी के सबब मुसलमानों ने मसाजिद में जुमा और ईदें की नमाज अदा करना बंद कर दी। फिर अंग्रेजी हुकूमत ने औकाफ में भी खयानत करने से दरेज ना किया। बंगाल में मोहसन फंड और पंजाब में इतमादुद्दौला फंड मुसलमानों के तलीमी अदारों के लिए वक्फ थे, लेकिन इन तलीमी अदारों में हिंदुओं को तलीम दी जाती और मुसलमानों का दाखिला ममनू था। इस हौसला शिकन माहौल और नामुवाफक गर्दनवाह से तकरीबन हर मुसलमान खानदान मुतासर हुआ। सवाल पैदा होता है कि इकबाल के बुजुर्गों ने इस सूरत हाल से क्या असर कबूल किया। सियालकोट एक छोटा सा शहर है और इकबाल का तल्लक एक मुतवसत उलहाल तजारत पेशा खानदान से था जिसकी नुमायाँ खसूसियात शराफत और दीनदारी थी। यह कयास करना तो सही नहीं कि जिस तूफान ने सारे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले रखा था और जिसकी जद में पंजाब भी आ चुका था, इससे सियालकोट महफूज रहा होगा। हो सकता है सैयद अहमद की तहरीक इसलाह और तंजीम जहाद के मुबल्लग या दाई यहाँ भी पहुंचे हों और सैयद साहब की तलीमात की बाजगश्त यहाँ भी सुनी गई हो, लेकिन इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफीक के लिए जो कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट में तलाश रिजक में सरगदां थे, ये मुमकिन ना था कि वह पहले अपने खानदान समेत सियालकोट से हिजरत करके हिंदुस्तान के किसी शहर का रुख करते और फिर वहां से सिंध के रास्ते सरहद पहुंच कर सिखों या अंग्रेजों के खिलाफ जहाद में हिस्सा लेते। सैयद नज़ीर नियाज़ी बयान करते हैं कि इन्हीं इकबाल ने बताया कि इनके दादा शेख मोहम्मद रफीक सिखों की तरफदारी में गुजरात में अंग्रेजों से लड़े थे 21 बार। इस बारे में उन्होंने मजीद तफसील नहीं लिखी। सिख फौज मई 1848 और फरवरी 1849 में आखिरी बार अंग्रेजों से नबर आजमा हुई और गुजरात में इनसे शिकस्त खाई। बहरहाल इकबाल के दादा के मुतालिक ये बात पहले कभी सुनने में नहीं आई। फोक अपनी किसी तहरीर में इस बात का जिक्र नहीं करते। अगर इकबाल ने ये बात कही और नियाजी को सुनने में कोई गलतफहमी नहीं हुई तो इनके अपने बयान के बाद इस अमर वाक्या की सेहत के मुतालिक मजीद तहकीक का सवाल पैदा नहीं होता, और अगर हो भी तो मजीद तहकीक के लिए अब किस से रजू किया जा सकता है। जहाँ तक इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद का तल्लक है, इन्होंने अंग्रेजों के जुल्मों इस्तेदाद का वो जमाना जरूर देखा जिसने मुसलमानों के दिलों में अंग्रेजी हुकूमत के लिए नफरत का बीज बो दिया। फोक के मुताबिक सियालकोट में अस्करियों ने 9 जुलाई 1857 को इल्म बगावत बुलंद किया, लेकिन दिल्ली पर कब्जा के बाद अंग्रेजों ने सियालकोट में दो अहदेदारों को सूली पर चढ़ाया और 139 अस्करियों को तोप से उड़ा दिया। इनमें बेशतर मुसलमान थे। शहर सियालकोट के मकीनों पर 50,000 रुपया इज्तमाही जुर्माना ऐद किया गया। शेख नूर मोहम्मद तबातन एक हलीम सुलाकन और अमन पसंद शख्स थे जिन्होंने या तो अपने काम से तल्लक था या इनका वक़्त सूफिया उलमा की मजलस में बैठते और राय और ज़ियादे इलाही में गुजरता था। इन्हीं अपने हम असर अहले इलम की तरह इस बात का एहसास होगा कि बरसगीर की अनाने हुकूमत मुसलमानों के हाथ से छिन चुकी है और इस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद में कामयाबी मुमकिन नहीं, क्योंकि इनके मालो दौलत हथियारों और जदीद अंदाज जंग का मुकाबला महदूद वसाइल और पुराने तौर तरीकों से नहीं किया जा सकता। नीज इस खित्ते के सारे मुसलमानों का हिजरत करके मुस्लिम ममालक में आबाद होना भी अगर अमली तौर पर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर था। माजी गुजर चुका था और मुस्तकबिल भी अभी पसे पर्दा था, इसलिए इस दौर के मुसलमानों के हाल की जिंदगी बड़े तजब्ब और करब व इजतराब में गुजर रही थी। तलीमी अदारों से फारसी, अरबी और इस्लामी अलूम का खात्मा ईसाई मशीनरियों के जरिए इस्लाम की मुखालफत में मनाजरे, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर रेख हमले वगैरह ऐसे इकदाम थे जिनसे मुसलमानों का अंदेशा हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत इनका नामो निशान मिटाने के बेतरबे है। चुनचा अपनी इनफरादी और इज्तमाही बका के लिए मुसलमानों ने ज़रूरी समझा कि इनके बच्चे अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल होने से बेशतर कुछ मदद के लिए दीनियात की तलीम हासिल कर लिया करें, ताकि बचपन ही से इस्लाम पर इनका ईमान इस कदर मजबूत हो जाए कि वो बाद में किसी भी किस्म की गैर इस्लामी तलीमात का असर कबूल ना कर सकें। चुनचा सरकारी सतह पर दीनी मदरसों के फुकदान की वजह से तकरीबन हर शहर के उलमा को मस्जिदों या अपने घरों में दरसगाहें और मकतब खोलना पड़े। सियालकोट में इन दिनों दरसो तदरीस के ऐसे चार मराकज कायम थे जिनमें मौलवी गुलाम मुर्तजा, मौलाना अब्दुल्ला, गुलाम हसन और मौलवी मुजम्मल के मदरसों में तो अरबी जुबान और दीनियात की तलीम दी जाती थी। अलबत्ता मौलाना सैयद मीर हसन के मदरसातुल उलूम में अरबी और फारसी अदब की तदरीस होती। शेख नूर मोहम्मद ने अपनी औलाद को अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कराने से बेशतर ना सिर्फ दीनियात या इस्लामी उलूम की तलीम की तहसील के लिए दरसगाह में भेजा, बल्कि घर में भी इनकी इस्लामी तरबियत का खास ख्याल रखा। 19वीं सदी के रबे आखिर के मुस्लिम बुजुर्गों का उम्मत मुसलमा पर यह बहुत बड़ा एहसान था कि इनकी तवज्जो के बायस आने वाली नस्ल में इस्लामी असबियत बेदार हुई, जिसने बिलाखिर बरसगीर में मुस्लिम कौमियत के जज्बा को फरोग दिया। बिलहाल शेख नूर मोहम्मद के छोटे भाई शेख गुलाम मोहम्मद और बड़े बेटे शेख अता मोहम्मद ने गलबन इसी वक्त सरकारी मुलाजमत हासिल की जब सर सैयद अहमद खान की सही व कोशिश से रफ्ता रफ्ता मुसलमानों की तरफ अंग्रेजी हकाम का रवैया बदलना शुरू हुआ। सफा नंबर 62, माखज बाब 2 नंबर 1, तारीख सियालकोट इज मोहम्मद दीन फोक मरतबा 1924 सफात 94 ता 126 नीज मुलहजा हो। तरीके सियालकोट इज अब्दुल समाद गुलाम मोहम्मद मालक मतबा समदी मोहल्ला रंगपुरा शहर सियालकोट तबात 1857 सफात 580 दोम। तारीख अकवामे कश्मीर तबात 1943 सफात 320 ता 323 नीज मुलहजा हो। रोजगार फकीर जिल्द दोम सफात 124 ता 126 133 ता 135 और जिक्र इकबाल इज अब्दुल मजीद सालक सफात 8 से 10 नंबर 3, हंटर की किताब हिंदी मुसलमान पर तबसरा इज सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी सफा 44 नंबर 4, हिंदी मुसलमान इज डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर अंग्रेजी सफात 3 4 135 ता 139 165 ता 176 ऑक्सफोर्ड तारीख हिंद एस वी ए स्मिथ अंग्रेजी सफ़ा 503 तारीख बगावत हिंद इज के और मेली सन अंग्रेजी जिल्द दोम सफ़ा 2 3 11 13 15 16 19 हिंदी इस्लाम अजमरे टी टाइटस अंग्रेजी सफ़ात 191 तक 193 नंबर 5, सीरत सैयद अहमद शहीद इज सैयद अल अबुल हसन अली नदवी सफात 57 ता 83 104 ता 143 150 ता 203 असारुल असनाद दीद अस सर सैयद अहमद खान सफात 43 ता 47 हिंदी मुसलमान अंग्रेजी सफात 12 ता 15 मजीद मुताले के लिए सैयद अहमद शहीद 2 जिल्दें इज गुलाम रसूल महर जमातुल मुजाहिदीन इज गुलाम रसूल महर सफात 57 ता 79 109 ता 129 नंबर 6, हिंदी मुसलमान अंग्रेजी सफात 44 ता 74 हिंदी इस्लाम अंग्रेजी सफात 179 ता 181 कलकत्ता रिव्यू अंग्रेजी जिल्द 5 मतबुआ 1870 सफा 104 एजन जिल्द 51 सफात 177 ता 178 तारीख बरतानवी हिंद इज जेम्स मिल अंग्रेजी जिल्द नहम सफात 220 ता 223 मजीद मुताले के लिए सर गुज़िश्त मुजाहिदीन इज गुलाम रसूल महज सफात 202 ता 209 नंबर 7, कलकत्ता रिव्यू अंग्रेजी जिल्द 51 सफात 188 179 एजन जिल्द 51 नंबर सी 11 सफात 381 384 मजीद मुताले के लिए सरगुज़िश्त मुजाहिदीन देखिए। नंबर 8, कश्मीर अज जी डी एम सूफी अंग्रेजी जिल्द दोम सफात 716 ता 719 नंबर 9, कलकत्ता रिव्यू अंग्रेजी जिल्द 51 नंबर सी 11 सफात नंबर 382 386 392 399 हिंदी मुसलमान अंग्रेजी सफात 23 ता 25 27 38 48 ता 105 مزید مطالعہ کے لیے سرزش سے مجاہدین دیکھیے۔ نمبر 10 ہند میں جدید اسلام ایس ڈبلیو سی سمتھ انگریزی صفحہ 162۔ نمبر 11 کلکتہ ریویو انگریزی جلد 51 نمبر سی 11 صفحہ 382۔ تاریخ بغاوت ہند انگریزی جلد اول صفحات 142 143 اور جلد دوم صفحہ 27۔ ہندی مسلمان انگریزی صفحات 11 24 25 26 ترتالیس اکسٹھ پچہتر اناسی 149۔ نمبر 12 1857 عیسی غلام رسول مہر صفحات 201 219 440 اور 474۔ نمبر 13 میری ڈائری ہند انگریزی صفحات 11 43 نیز ملحظہ و ہند میں برطانوی حکمیت کا طلوع اور تکمیل ازاری تھامس اور جی ٹی گیرٹ انگریزی صفحہ 439۔ نمبر 14 کانپور ازجی اور ٹریلی وان انگریزی صفحہ 109 نیز دیکھیے ہند میں برطانوی حاکمیت کا عروج اور تکمیل انگریزی صفحہ 446۔ نمبر 15 کیسر التواریخ جلد دوم صفحہ 452۔ نمبر 16 حیات جوید حصہ اول صفحات 71 214 222۔ 17 کلکتہ ریویو انگریزی جلد 50 صفحہ نمبر 73 اور 75۔ 18 ہند کا تاریخی جغرافیہ از آر ای رابرٹس انگریزی صفحہ 363۔ ہندی برطانوی حکمیت کا طلوع و تکمیل انگریزی صفحات 442 443۔ 19 مضامین تہذیب الاخلاق جلد دوم صفحات 522 523۔ 20 ہندی مسلمان انگریزی صفحات 168 تا 171 184 193 194۔ اسباب بغاوت ہند از سر سید احمد خان صفحات 17 تا 19۔ 21 اقبال کے حضور جلد صفحہ اول صفحہ 1994۔ 22 تاریخ سیالکوٹ صفحہ 126۔ نمبر 23 ذکر اقبال صفحات 10-11۔ صفحہ نمبر 65 باب 3 تاریخ ولادت کا مسئلہ۔ اقبال کی تاریخ ولادت عرصہ سے ایک متنازع فقیہ مسئلہ رہا ہے اور اس سلسلے میں کئی سن بیان کیے جاتے رہے ہیں۔ اقبال کی زندگی کے دوران میں جو مضامین یا کتابیں ان پر تحریر کی گئی ہیں ان میں اقبال کا سن ولادت 1870 1872 1875 1876 یا 1870 بتایا گیا ہے۔ ان مصنفین میں سے چند تو اقبال کے حلقہ احباب میں سے تھے لیکن بیشتر انہی ذاتی طور پر نہ جانتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ اقبال اپنی حالات زندگی کی تشہیر میں دلچسپی نہ رکھتے تھے، اسی لیے 1922 میں جب فوق نے ان سے بذریعہ خط حالات طلب کیے تو انہوں نے جواب میں لکھا، باقی رہے میرے حالات سو ان میں کیا رکھا ہے۔ اقبال یورپ میں مطبوعہ اقبال اکیڈمی 1986 کے مصنف ڈاکٹر سعید اختر درانی کی تحقیق کے مطابق قیام یورپ کے دوران میں اقبال نے 1 اکتوبر 1905 کو ٹرینٹی کالج کیمبرج کے رجسٹرار میں اپنے ہاتھ سے اپنی تاریخ ولادت محرم 1876 تحریر کی۔ پھر انہوں نے 6 نومبر 1905 کو لنکنز ان لندن کے رجسٹر داخلہ میں اپنی عمر 29 برس درج کیا جس کے مطابق سن ولادت 1876 بنتا ہے۔ 1907 میں جب اقبال نے ڈاکٹریٹ کے لیے اپنا تحقیقی مقالہ ایران میں فلسفہ مباد الطبیعیات کا ارتقاء انگریزی میونخ یونیورسٹی میں پیش کیا تو اس کے ساتھ اس یونیورسٹی کے دستور کے مطابق ایک خود نوشت سوانی خاکہ بھی منسلک کیا جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، میں 3 ذی قعدہ 1294 بابطابق 1876 کو سیالکوٹ پنجاب انڈیا میں پیدا ہوا۔ اس تحریر سے ظاہر ہے کہ انہوں نے سن ہجری سن میں اپنی ولادت کی تاریخ ماہ اور سال کے ساتھ کوسین میں اس کا متبادل عیسوی سن یعنی 1876 اندازے سے درج کر دیا، مگر اسے صحیح طور پر پوری تفصیل کے ساتھ عیسوی تاریخ ماہ یا سال کے مطابق تبدیل نہ کیا۔ ڈاکٹریٹ کے لیے ان کا زبانی امتحان میونخ میں 4 نومبر 1907 کو پروفیسر ایف ہومل کے زیر صدارت ایک بورڈ نے لیا اور اس کے متعلقہ کارڈ میں ان کی تاریخ ولادت 9 نومبر 1877 दर्ज है। बाद में 1921 में जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की खातर इंग्लिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट बनवाया तो इसमें भी इन्होंने अपना सन विलादत 1876 ही तहरीर किया। इकबाल के हसूल तलीम की खातर यूरोप जाने का पासपोर्ट जो 1905 में बनवाया गया होगा मौजूद नहीं, मुमकिन है इसमें भी साल विलादत 1876 ही दर्ज हो। जिम खाना जवेद जिल्द अव्वल मुसनफा लाला सीरी राम तबात 1908 में इकबाल का सन विलादत 1870 दर्ज है। इस किताब की तहरीर या इशात के दौरान इकबाल इंग्लिस्तान में थे और ऐन मुमकिन है कि लाला श्री राम ने इकबाल के हालात ज़िंदगी इनके पास जानने वालों से हासिल किए हों, क्योंकि वो मुकदमा किताब में शेख अब्दुल कादर पंडित कैफी और नवाब सर जुल्फकार अली खां का जिक्र इसी सिलसिला में करते हैं। शायद इनके हवाब ने अपने अंदाजे के मुताबिक साल विलादत 1870 बताया हो। इंतखाब ज़रीं मरतब सर सैयद रास मसूद तबात 1921 में तारीख विलादत अगस्त 1870 बा मुताबक 1227 तहरीर है। कामूस मशहीर जिल्द अव्वल मरतब निज़ामी बा दीवानी तबात 1924 में साल विलादत 1870 और कंद उर्दू मरतब जलालुद्दीन अहमद जाफरी तबात 1924 में भी साल पैदाइश 1870 ही दिया गया है। सर सैयद रास मसूद के अलावा बाकी हजरात इकबाल के हलका बाब से तल्लक ना रखते थे, बल्कि ऐन मुमकिन है कि इस जमाने में सर सैयद रास मसूद के साथ भी इकबाल के तल्लुकात इतने गहरे ना हों जितने बाद में हो गए थे। इसलिए कयास किया जा सकता है कि इन तमाम हजरात ने साल विलादत खम खाना जवेद मतबूआ 1908 से अखज किया हो। डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम और अब्दुल कादर सरवरी इकबाल पर अपने अपने मजमूनों में जो असारे इकबाल मरतब दस्तगीर रशीद अदारा अशात उर्दू वहीद हैदराबाद दक्कन में शाया हुए इकबाल का सन विलादत 1872 दर्ज करते हैं। इकबाल के हवा में इनके हालात ज़िंदगी पर एक मजमून फोक ने तहरीर किया जो हालात इकबाल के अनवान से कश्मीरी मैगजीन लाहौर 1909 में शाया हुआ। इसमें इकबाल का साल पैदाइश 1875 दर्ज है। इसके बाद नवाब सर जुल्फकार अली खान ने इकबाल पर अपने अंग्रेजी किताबचा बनवान मशरक से एक आवाज़ तबात 1922 में इनका सन विलादत 1876 के लगभग तहरीर किया है। मौलवी अहमद दीन एडवोकेट ने इकबाल पर अपनी किताब इकबाल तबात 1924 बार अव्वल और 1936 बार दोम में इनका साल पैदाइश 1875 लिखा है। 1930 में फोक ने अपनी किताब मशाहिर कश्मीर की तबासानी में 1875 ही को इकबाल का सन विलादत करार दिया, लेकिन 1932 में नरेंग ख्याल के इकबाल नंबर में फोक ने इकबाल की स्वान हयात पर अपने मजमून में पहली बार इनका साल पैदाइश 1876 तहरीर किया। और इसी तरह तारीख अकवाम कश्मीर जिल्द दो में भी 1875 की बजाय 1876 ही को इनका सन विलादत करार दिया। यहाँ ये वाजे कर देना ज़रूरी है कि फोक नवाब सर जुल्फकार अली खान और मौलवी अहमद दीन का तल्लुकात इकबाल से बहुत गहरे थे। शेख इजाज़ अहमद के कयास के मुताबिक फोक ने सन विलादत की तसीह इकबाल के इमाम पर की होगी, सफ़ा नंबर 68। लेकिन डॉक्टर वहीदुद्दीन कुरैशी का इतराज़ है कि इस सिलसिला में अगर 1922 से लेकर 1923-30 तक इकबाल ने फोक की कोई मदद ना की तो बाद में तावन क्यों कर किया होगा। इनकी राय में फोक ने या तो नवाब सर जुल्फकार अली खान की तहरीर पर भरोसा किया या मलक राज अनंत के मजमून पर, जिसका माखज भी नवाब सर जुल्फकार अली खान ही की किताब थी। इनके ख्याल में ये भी मुमकिन है कि नवाब सर जुल्फकार अली खान और मौलवी अहमद दीन के बयान ही इकबाल की नज़र में मोतबर शुमार हुए हों। फोक के नाम इकबाल के खत मुहर्रा 19 दिसंबर 1922 से ज़ाहिर है कि वो कसरे नफस से या कदरे तकल्लुफ़ाना अंदाज में तहरीर किया गया। गलबन फोक ने इन्हीं खत में अपने हालात लिखने की फरमाइश की जिसे इकबाल ने इनकसार से टाल दिया, लेकिन साथ ही तहरीर किया, मेरा तर्ज रहायश मशरकी है, आप शौक से तशरीफ़ ला सकते हैं। मुमकिन है बाद की मुलाकातों में जब फोक ने इन्हीं बहसीयत दोस्त मजबूर किया तो सन विलादत के सिलसिला में इकबाल ने इनकी रहनुमाई कर दी हो। सवाल पैदा होता है कि आखिर इकबाल के अलावा नवाब सर जुल्फकार अली खान की मालूमात का जरिया क्या था। ज़ाहिर है इन इकबाल ही ने बताया होगा कि मेरा सन विलादत 1876 की लगभग है, जिसे उन्होंने इसी तरह तहरीर कर दिया। ये अलहदा बात है कि इन्होंने जिस सन को लगभग के लफ्ज़ से जाहिर किया है, फौक या मलक राज अनद ने इसे हतमी बना दिया। मगर 1905 में ट्रेंटी कॉलेज कैम्ब्रिज के रजिस्टर में इनका अपनी तारीख विलादत मुहर्रम 1876 तहरीर करना, फिर लिंग्स इन कॉलेज के रजिस्टर दाखिला में अपनी उम्र 29 वर्ष दर्ज करना, जिसके मुताबिक सन विलादत 1876 बनता है, या 1931 में अपने पासपोर्ट में सन विलादत 1876 लिखना। इन हकायक के हवाले से ये गुमान करना कि इकबाल की नज़र में नवाब सर जुल्फकार अली खान और मौलवी अहमद दीन के बयान मोतबर शुमार हुए होंगे, दुरुस्त मालूम नहीं होता।